بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ہم لوگ یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں شاید جس لیول پہ آپ لوگ اس وقت ہیں یا ٹینتھ کا ایگزام لکھیں گے یا انٹر فرسٹ یا سیکنڈ کا ایگزام لکھیں گے آنے والے سال. یہ پیریڈ بہت زیادہ کریٹیکل اور امپورٹنٹ رہتا کیونکہ یہاں سے آپ ایک نئی دنیا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کا جو ہے ایک ایڈلٹ کے طور کے اوپر, ایک ایسے فرد کے طور کے اوپر کہ جو اب بڑا ہوا ہے اور ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ اپنی ریسپانسبلٹیز کو اب قبول کرنا شروع کر رہا ہے یا کر چکا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اپنے آپ کو خود ریسپانسبل سمجھنے لگے ہیں. ایک زمانہ تھا جب آپ کے ماں باپ آپ کو پش کرتے تھے, اب یہ ٹائم یہ ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو سمجھ کر کے پش کرنا ہے, آگے لے جانا ہے. اور اگر ہم پلان کر کے یہ کام نہیں کریں گے تو اندازے پہ کام ہوگا. جیسا اندازے پہ میں یہاں پر آنے کی کوشش کیا, 5 کلومیٹر آگے گیا, پھر 5 کلومیٹر پلٹ کے آ کے جو ہے یہاں پر ایک 10 منٹ دیر سے پہنچا یا 15 منٹ دیر سے پہنچا. یہ 10-15 منٹ پھر بھی بڑا کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر آپ 1-2-3 سال اگر آگے بڑھ جائیں تو پھر آپ پلٹ کے وہ پوائنٹ پہ نہیں آ سکتے کہ جہاں پہ آپ پھر سے شروع کر سکیں گے. تو یہ سال اگر ویسٹ گئے آپ کے یا اس طریقے پر نہیں گئے جس طریقے پر آپ لوگوں کو جانا چاہیے تھا آپ کے کیپبلٹی پوٹینشیل صلاحیت کے مطابق. آپ کی صلاحیت رہتی نا, ہر آدمی کی کوئی صلاحیت رہتی. ہم کوئی جانور ایسے نہیں ہے کہ جس کا کوئی گروتھ کا پیٹرن نہیں رہتا. بندر اچھا ہو جائے گا تو کیا کرے گا, اچھی کلاٹی مارے گا. جو خراب بندر رہے گا وہ خراب کلاٹی مارے گا. ٹھیک ہے, جو اچھا بندر رہے گا اونچے اونچے جو ہے درختوں پہ سر پھل توڑ کے کھا پائے گا. جو کمزور اچھا نہیں رہے گا وہ گرے ہوئے پھل چن لے گا. مگر انسانی زندگی تو ایسی نہیں رہتی. انسانی زندگی کے اوپر جانے میں اور نیچے رہنے میں بہت بڑا فرق ہے. آسان اگر الفاظ میں بتلا دوں تو امام حسین اور یزید کا فاصلہ ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا, یا تو وہ بلندی مولا یا معاویہ کا فاصلہ ہو سکتا ہے, رسول یا ابو سفیان کا فاصلہ ہو سکتا ہے. آپ لوگ کو تو معلوم ہے یزید کا باپ معاویہ, معاویہ کا باپ ابو سفیان, وہی خاندان سے نکلے ہوئے لوگ تھے. کچھ جنریشن پہلے ایک ہی فرد کی اولاد تھے, ایک ہی دادا کی اولاد تھے, اینسیسٹر کی اولاد تھے. لیکن زمین آسمان کا فرق کیسے ہو گیا, انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا. ہماری زندگیوں پر جتنا اثر رسول کا اور آل رسول کا پڑے گا ہماری زندگیاں ان کی زندگیوں سے نزدیک ہونے لگیں گی. ٹھیک, جتنا اثر کم پڑے گا اتنی ہماری زندگی ان کی زندگی سے دور ہونے لگے گی. اور ان کی زندگی سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے, کس کی زندگی سے قریب ہوتی جائے گی, سمجھ رہے نا, انحطاط بولتے, ڈی جنریشن بولتے. آدمی بلند ہو سکتا, آدمی گھٹ سکتا. آپ کے سن میں اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں ڈی جنریٹ ہو رہا ہوں, سڑ رہا ہوں. کوئی بھی چیز سڑتی ہے تو اس میں سے بدبو آتی ہے یا نہیں ہے؟ کھانا, سالن, میوہ, کوئی بھی چیز جب سڑ جاتی ہے تو اس میں بدبو آتی ہے. ٹھیک ہے, اور انسان اپنی ناک سے اس کو پہچان سکتا ہے. سامنے ایسا کھانا رکھیں جو اتر گیا ہو تو آپ بو سے بولیں گے کہ سالن یا کھانا اتر گیا ہے, سڑنا شروع ہو چکا ہے. انسان جب مر جاتا ہے تو سڑن ابتدا ہی سے شروع ہوتی ہے, جیسے روح پرواز ہوئی سڑن شروع ہو جاتی ہے. انگریزی میں ریگر مورٹس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو زندہ انسان جب سڑتا ہے تو بو آتی ہے, مردہ سڑتا ہے تو بو آ جاتی ہے. اس لیے جلد سے جلد کوشش کرتے ہیں کہ دفنا دیں, یا اگر کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں, आइस बॉक्स में रख देते, या पहले आइस बॉक्सेस नहीं होते तो मॉर्चुरी में रख देते थे, ले जाके रख देते थे वहाँ 2 दिन 1 दिन के बाद वो वहाँ पर रहता था बॉडी वही फ्रीजिंग टेम्परेचर पर, फिर घर को ले आते थे। मगर जिंदा आदमी जब सड़ता है, जब इंसान की रूह सड़ती है तो वो नाक से आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो फिर हम सड़ रहे हैं बोल के मालूम कैसा हो? और अगर सड़ नहीं रहे हैं तो ग्रो हो रहे हैं बोलकर कैसा मालूम हो? हम अली वाले हो रहे हैं बोल के कैसा मालूम हो? हम हुसैन वाले हो रहे हैं बोल के कैसा मालूम हो? हम रसूल वाले हो रहे हैं बोल के कैसा मालूम हो? हम अल्लाह वाले हो रहे हैं बोल के कैसा मालूम हो? और ऑपोजिट वो कैसे मालूम? नाक से तो नहीं मालूम होता, तो कौन सी चीज से मालूम होता बोल सकते हैं? आदमी को जब अपनी कैपेबिलिटी और सलाहियत मालूम हो जाए, फर्स्ट उसकी ग्रोथ के हिसाब से अगर वो रास्ते पर चल रहा है जो उसकी सलाहियत अंदर है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ग्रोथ। और अगर वो सलाहियत उसकी पहले ही से नहीं पता है, ठीक है, तो ना ग्रोथ समझ में आएगी ना फेलियर समझ में आएगा, ना तरक्की समझ में आएगी ना जवाल समझ में आएगा। तो पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक इंसान होने के नाते अपनी सलाहियत और कैपेबिलिटी का अंदाजा हो जाना है कि मैं कोई मामूली चीज नहीं हूं। तो आप जब अपने आप को एक लेवल पर समझेंगे, ठीक है, हमारे पास रूह किसकी है? कौन हमारे को रूह किसकी फूकी गई इंसान में? कुरान की आयत है, वह नफख तो फी है मिन रूही, और जब मैं उसमें अपनी रूह फूकूंगा, तो हमारी रूह जो है जिसमें सड़ने की भी गुंजाइश है और बुलंद होने की भी गुंजाइश है, वो किसकी है? प्योरली अल्लाह की है। बदन तो वास्तों से हम तक पहुंचा, पहले मिट्टी था, मिट्टी से के बाद माँ बाप के नुतफे में मुंतकिल हुआ, नुतफा माँ के रहम में आया, वहां से फिर हम दुनिया में आए, ठीक है। तो ये मिट्टी का सफर है जो अल्लाह हमको माँ बाप के जरिए से तय कराकर दुनिया में लाता है। कुरान की आयत है, वमिन आयात ही खलकुम मिन तुराब, और ये तो अल्लाह की निशानियों में से है कि वो तुम्हें मिट्टी से बनाया। कोई शक है? कोई भी शक नहीं है, सबको समझ में आता है मिट्टी से बने हुए, और बाकी भी हम वही गजा खाकर रहते हैं कि जो हमको मिट्टी से मिलती है, या तरकारियों की शक्ल में, या अनाज की शक्ल में, या उस गोश्त की शक्ल में कि जो जानवर घास खाकर हम तक मुंतकिल करता है अपने गोश्त के जरिए से। बात सही हो गई? तो ये तो मादी चीज हुई जो वास्तों से हमारे पास आती है और वास्तों से हम उसको बाकी रखते हैं। पानी हमको पीने की जरूरत पड़ती है, खाना खाने की जरूरत पड़ती है, जो सब मिट्टी से निकलता है। तो अब जब हमारी ये कैफियत है, और रूह जो है डायरेक्ट किसकी है? अल्लाह की दीवी रूह है। जब अल्लाह कुरान में मैं बोलता है तो कोई वास्ता नहीं होता, और जब हम बोलता है तो वास्ता रहता है। जहां जहां के ऊपर आप देखेंगे अल्लाह मैं बोलेगा, वहां पर वास्ता बगैर काम हुआ है। कई जगहों पर मैं हम बोलता है, कई जगहों पर हमने ये किया, हमने ये किया, हमने, मगर जहां पे आपकी रूह की बात आती है वो कहता है मैंने। तो आप में और अल्लाह, यानी आपकी रूह में और अल्लाह में कोई डिफरेंस जो है चीज आकर नहीं हुआ है, कोई वास्ता बीच में नहीं है। आप हैं और डायरेक्ट अल्लाह से निकले हुए आप हैं। अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब जो चीज हो सकती है वो कौन है? आप ही हैं। और अल्लाह से सबसे दूर जो चीज हो सकती है वो कौन है? वो भी आप ही हैं। ये अजीब किस्म की प्रॉब्लम आ गई कि अगर आप पोटेंशियल को सही नहीं पहचाने, अपनी कैपेबिलिटी को सही, सलाहियत को सही नहीं पहचाने, तो आप एक ऐसी चीज को अपने पास रखे हुए हैं जिससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। जब आप मैं बोलते हैं तो आपको दिमाग का ख्याल आता है, अपने अपने उंगलियों का, हाथ का, पैर का, सीने का, बालों का किसी चीज का ख्याल आता है? मैं जब कह रहा हूं मैं अपने बाल कह रहा हूं, किस चीज का ख्याल आता है? कोई बदनी हिस्से का ख्याल आता है? मैं जब आप बोलते हैं नहीं आता ना, इब्तदा से आप लोग समझ लिए, जब आप मैं बोलते हैं तो कोई ऐसी चीज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो आपकी पूरी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को भी अगर आइडेंटिफाई करके बोला जाए तो नहीं है? आप बॉडी का एहसास भी जब नहीं करते हैं तब भी आप ख्वाब में अपनी आइडेंटिटी को महफूज रखते हैं। नींद में तो आदमी को अतराफ क्या हो रहा है नहीं मालूम, ठीक है ना, उसके कान काम करते हैं छोटी मोटी आवाज के लिए, आंखें तो बंद रहती हैं, आजू बाजू में जो भी हो रहा है वो दर्क नहीं करता, जानता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने वजूद का एहसास उसको रहता है। तो ये वजूद जिसको आप, मैं बोल रहा हूं, जो आपका ये एग्जिस्टेंस है जिसको आप लेके चल रहे हैं, उसका अगर आपको एहसास ही नहीं रहा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, छोटे बच्चे को आप 2000 की नोट दे दीजिए, थोड़ी देर खेलेगा और उसके बाद फाड़ देगा, क्यों? उसको उसकी वैल्यू नहीं मालूम है। इसलिए बच्चों के हाथ में पैसे नोट की शक्ल में तो कम से कम नहीं देते, क्योंकि उनको नहीं मालूम, फेंक देंगे, खराब कर देंगे उसको, उस पर कुछ लिख देंगे, ठीक बोल रहा हूं? 2000 की नोट है, नुकसान है, लेकिन रूह की कुछ कीमत बोल सकते हैं? रूह की कीमत है कुछ? आपका जो कुछ है वो आपकी रूह है, और वो भी किसकी दी हुई। तो उसको जब आप नहीं समझकर नुकसान में डाल देते हैं तो उसको कुरान कहता है खुसरानुल मुबीन, क्लियर 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 लॉस, ऐसा लॉस के जो कोई और चीज से कॉम्पेंसेट नहीं होता, उसका जुबरान नहीं होता कि ये चीज मैंने इसके एवज बदल दी, उसके एवज में फकत और फकत जो चीज उसको मिल सकती है वो रिवायतों में मिल सकता है कि अल्लाह की खुशनुदी और जन्नत, उससे कम के रिवॉर्ड के लिए ये रूह की कोई पूरी कायनात भी उसको मिल जाए तो आपकी रूह की कीमत अदा नहीं हुई। कुरान इसलिए कहता है इन्होंने सस्ता सौदा कर दिया, कुरान में बार बार अल्लाह कहता है सस्ता सौदा कर दिया, अपने आप को मामूली चीज के लिए बेच दिया, दुनिया के लिए बेच दिया, जबकि दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई थी, तुमने अपने आप को दुनिया के अवज बेच दिया। जो चीज आपके लिए बनाई गई है उसके लिए आप अपने आप को बेच रहे हैं, तो फायदा कर रहे हैं या नुकसान? बोलिए, जो चीज आपके लिए बनाई गई है आप उसके लिए बिक जा रहे हैं, अपने आप को बेच दे रहे हैं, वो तो बनाई गई है आपके लिए, फिर अपने आप को उसके लिए क्यों बेच रहे हैं? उसको ढालने के लिए आपको बनाया गया है, उसको संवारने के लिए आपको बनाया गया है, उसको सही तरीके के तौर पर समझकर समझाने के लिए आपको बनाया गया है। आप बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं जो कुछ हूं, मैं दुनिया अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको अपने आप को बेचने को तैयार हूं। आज की 99.9% आबादी ऐसी जिंदगी गुजार रही है, 99.9 के दुनिया के अवज हम अपने आप को बेच दे रहे हैं, जरूरत नहीं है। आपको दुनिया को सवारने के लिए बनाया गया है, ना दुनिया के अवज अपने आप को बेच देने के लिए। मैं थोड़ा और उसको क्लैरिफाई करता हूं, मिसाल दे रहा हूं, गौर से सुनिए। आदमी अगर, हर आदमी को अपने अपने हिसाब से रहने दो, ठीक है, आदमी अगर ये समझे कि मुझे दुनिया को फैशन करने की, दुनिया को ढालने की, दुनिया को मोल्ड करने की सलाहियत दिया है, या फर्दी तौर पर या ग्रुप की शक्ल में, ठीक है, फर्दी तौर पर यानी इंडिविजुअली, अकेले किसी के पास भी नहीं, पैगंबरों के पास भी अल्लाह ने वो सलाहियत नहीं दी, हमेशा ग्रुप के जरिए से ही पैगंबरों ने और आइम्मा ने दुनिया को अपनी मोल्ड करने की कोशिश की अतराफ, ठीक है। तो हम भी अगर ये सोचें कि हमको भी जो है मोल्ड करना है दुनिया को, हमको अपने आप को दुनिया को बेचना नहीं है, तो आप दो काम करेंगे, एक तो आपके पहले पोटेंशियल, आपकी सलाहियत को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद वैसे ग्रुप के साथ हरकत करेंगे, उनके साथ मूव करेंगे कि जो आपको उस पर्पस को अचीव करने में, कि जो मिलजुल कर मोल्ड करना है दुनिया को, उनका हिस्सा बन जाऊं। अगर आप ये नहीं कर पाए तो लामहाला, अगर आप एक ऐसे ग्रुप में नहीं रहे तो आप अपने आप को किसके अवज भेज देंगे, दुनिया के अवज, या दुनियादार लोग जो आपको कीमत लगाएंगे उसके अवज। आप ढूंढते रहेंगे कि दुनिया में पैसा ज्यादा कहां है, आप ये भूल जाएंगे कि पैसा आप ईजाद कर सकते हैं, आपका और आपका ग्रुप मिलकर ईजाद कर सकता है। आप दूसरे कैसा ईजाद कर लिए पैसा, अगर हर आदमी यही बुनियाद पर हरकत करता कि दूसरी जगह पर पैसा किसने ईजाद किया है, मैं उसकी कोई छोटा मोटा काम करके अपना पेट भर लूं, ठीक है, तो क्या करेगा? इंजीनियरिंग की जरूरत है तो इंजीनियरिंग कर लेगा, कॉमर्स की जरूरत है तो कॉमर्स कर लेगा, सीए बन जाएगा बहुत हुआ, या कुछ और काम कर लेगा। मगर अगर ये सोचे कि मैं मोल्ड कर सकता हूं अपने अतराफ को, मैं खुद पैसा ईजाद कर सकता हूं, तन्हा नहीं तो ग्रुप में मिलकर, पूरी उसकी सोचने का ढंग बदल जाता, तब्दील हो जाता। पढ़ता वही, लिखता वही, लेकिन दुनिया अपनी अपने हाथों से बनाने के लिए पढ़ता, बहुत सीरियस पढ़ना पड़ता, वो सवालात भी इस दिमाग से करना पड़ता जो किताब में लिखे हुए नहीं है। दोस्तों से, अपने उस्तादों से वो सवालात करना शुरू करता जो किताबों में लिखे हुए नहीं है। तो जब उसका दिमाग किताबों से पूरी तरीके से उनको समझने के बाद किताब को क्रॉस कर जाता है, किताब को क्रॉस कर जाता है, सोसाइटी को देखकर सोसाइटी को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, जब उस इंसान में वो अल्लाह सलाहियत देता है कि जो खुद चाहे वो ईजाद कर सके, अपने अतराफ को चेंज कर सके, अपने अतराफ से चेंज ना हो, ये आपके अंदर की सलाहियत है। दो ऑप्शंस हैं, या आप अतराफ को चेंज कर सकेंगे अल्लाह की मदद से और उन दोस्तों की मदद से कि जो आपके साथ हैं, या आप अतराफ के माहौल से मुतासिर होके चेंज हो जाएंगे। अल्लाह के अलावा आपके लिए हकीकी माना में कोई खैर ईजाद नहीं कर सकता, क्योंकि आप जिंदा हैं उसके जिंदा रखने से, पैदा हुए उसके पैदा करने से, ठीक है ना, बाकी भी हैं उसके बाकी रखने से। तो बड़ा पूरा, जब मर भी जाएंगे जब वो चाहेगा, तो जब पूरी तरीके से उसके हैं तो कहे क्यों नहीं जिंदगी उसके लिए गुजार देते। अच्छा, जब वो जिंदगी उसके लिए गुजारना है तो आपको खाने से रोक रहा है, खेलने से रोक रहा है, कोई अच्छी चीज से रोक रहा है, ठीक है, बल्कि आपकी वो सलाहियत को और बढ़ाते जाने का वादा किया है, जिंदगी को बेहतरीन जिंदगी बना दूंगा कहता है। वो लोग जो अच्छे काम करते हैं, कुरान की आयत है, ठीक है, उनके लिए मैं एक जबरदस्त जिंदगी देने को तैयार हूं। सवाल यह है कि हम वो जिंदगी लेने को तैयार हैं, वो जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हैं, वैसा पढ़ने को तैयार हैं, वैसा गुनाहों से बचने को तैयार हैं, हैं? अल्लाह की वास्ते जिंदगी गुजारना मतलब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, उतनी हिम्मत है या नहीं? मर्जी मेरी रहेंगी, नाम तेरा लूंगा। अल्लाह बोलता नाम अपना ले लो, मर्जी मेरी, बोलते ये जमेगा नहीं, नाम तेरा मर्जी मेरी, वो बोलता है मर्जी मेरी नाम तुम्हारा, कौन सी वाली चीज कबूल करना चाह रहे हैं? मर्जी अल्लाह की, नाम अपना, या नाम अल्लाह का जबान पे और मर्जी, क्या करेंगे? अभी सोच रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन यानी अल्लाह की मर्जी, उसके बाद उन्हें जो चाहे वो करने दो मेरे साथ, ठीक है। कुरान यही लोगों की तरफ आइडेंटिफाई करता है, बहुत सी कुरान की आयत है, बहुत सी कुरान की आयत है जो अल्लाह उन लोगों के बारे में बोलता है कि जो अपने आप को अल्लाह को क्या करते हैं, बेच देते। मिन अन्नासे मैयश्री नफ्सुहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, लोगों में से वो भी होता है कि जो अपने आप को बेच देता है कि जो किसके लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। आप अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाह रहे हैं, अच्छा पढ़ने से अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है, ठीक है, ऐसे एंटरटेनमेंट में जिसके अंदर कोई बुराई ना हो उसको फॉलो करने से, टेबल टेनिस खेल लिए, कैरम खेल लिए, दूसरे और खेल खेलने से, इसमें अल्लाह की खुशनुदी है नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉडी की एनर्जी है ना कहीं तो स्पेंड होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर अल्लाह के हवाले करने से फायदा ही फायदा है और आप नहीं कर रहे हैं तो आपको अकलमंद बोलेंगे या बेवकूफ, बेवकूफ ही बोलेंगे ना। जो आदमी अपने आप को समझ नहीं सका है और अल्लाह को नहीं समझ सका और नतीजे में अपनी जिंदगी को अल्लाह के बगैर गुजारना चाह रहा है, ये बात को कबूल करते हुए कि अल्लाह ने उसको खल्क किया, उसको जिंदा रखा है और जब चाहेगा उसको उठा लेगा, तो अपन लोग इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकते हैं? करते करते नहीं करते? दुनिया में क्या हो रहा है? क्योंकि सब लोग बेवकूफी की तरफ जा रहे हैं, हम भी देखते कि हम भी अगर बेवकूफ हो गए तो हमारी जिंदगी जैसी भी है ठीक चल तो जाएगी। आपको जिंदगी चलाना है या जिंदगी बनाना है? जिंदगी चलाना ऐसे ही है जैसे कि कोई पानी बह रहा हो, नदी बह रही हो और कोई चीज उसमें गिर गई हो और वो नदी के बहाव से आगे बढ़ रही हो, कश्ती नहीं बोलते उसको, कब तक बहेगी कहां पर जाएगी उसको पता नहीं है, लेकिन कश्ती अगर है तो वो अपने आप को गाइड कर सकती है और जहां उसका मकसद है वो पहुंचा सकती है। तो ये दुनिया के बहाव में, ये पानी जो दुनिया का जो बह रहा है, ये टाइम की शक्ल में, पानी की शक्ल में, जो भी आप बोलो, उसमें आप कोई ऐसी चीज बन जाना चाहते हैं कि जो खाली फ्लोट हो, बहती रहे, या आप अपने मुकद्दर को, अपने फेट को अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, किस्मत को, कोई बहती हुई चीज बनना चाह रहे हैं कि जो आगे तो बढ़ रही है लेकिन फोर्सेस जो उस पर एक्ट कर रहे हैं उसकी मर्जी के नहीं है, वो किसी शक्ल से आगे बढ़ रही है, सभी जो जा रहे हैं मैं भी उनका एक हिस्सा बन गया, या नहीं हर कदम सोच के उठाऊंगा नहीं तो नहीं उठाऊंगा, हर कदम दिक्कत से गौर करूंगा या नहीं गौर करूंगा, कौन सी चीज सोच के समझ के। वो पोजिशन पे आप लोग बैठे हुए हैं यहां पर, आप लोग के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग अपनी जिंदगी एक लेवल तक के प्रोफेशनल्स के तौर पे गुजार रहे हैं और अब वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों में वो वैल्यू सिस्टम्स को ले आएं, वो अर्जिशें, वो सोचने का तरीका ले आएं कि जिसमें ना फकत आप अपने लिए बल्कि सौवों और हजारों के लिए सोचने के काबिल बने, सौवों और हजारों के लिए, और जो सौवों और हजारों के लिए सोचता उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई में उसको सबसे आगे होना पड़ता है, सोचने में उसको सबसे आगे होना पड़ता है, सोचने में सबसे आगे होने के लिए है कि दिमाग में हर वो चीज जो आपके सोचने में रुकावट बन रही है, और गुनाह सबसे बड़ी चीज है जो सोचने में रुकावट बनता है, याद रखो, सोचने, सही सोच से सबसे बड़ी चीज जो रोकती है वो क्या है, गुनाह है, हर्डल है, आप आसानी से भाग नहीं सकेंगे। अगर आपके मैदान में जहां पर आप दौड़ते हैं अगर वहां पर बार बार एक थोड़ी थोड़ी फासले के ऊपर एक हर्डल ला दिया जाए तो आपकी स्पीड कम होगी या ज्यादा, ठीक है, और ये ऐसे हर्डल्स हैं कि जिसकी साइज आपको मालूम नहीं है, गुनाह करना आपको मालूम है, गुनाह का नतीजा वो अल्लाह के हाथ है, तो पता चला कि कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जो दीवार बन जाते हैं, तो ग्राउंड में दीवार बड़ी ऊंची लगा दी जाए तो क्रॉस कर सकते हैं, आदमी हिम्मत हारता और दुनिया की दौड़ में हिम्मत और हौसला खो के आगे बढ़ने की ख्वाहिश खत्म करता और हजारों के बारे में फायदा करने वाला इंसान फकत अपने फायदे पे आके रुक जाता और जिंदगी गुजार लेता। कल क़यामत के दिन अल्लाह सामने फरिश्तों को लाकर अगर पूछवाए या इंसान के हाथ पैर खुद गवाही देने लगेंगे जैसा कुरान कहता है तो पता चलेगा कि हम तो हजार लोगों को अच्छा कर सकते थे, हम अपने आप को डुबा लिए फकत क्योंकि हम हमने अपनी सोची। अपनी सोचने का मतलब यह है कि आप अपने आखिरी एच पे आ गए हैं, आपको वहां रहना था जब आपको हजार लोगों की सोचनी थी, आप होते 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 यहां आ गए, इसको कहते हैं जहन्नम का किनारा, एक कदम पीछे हुए तो वो भी नहीं रहते बाकी, जो आदमी अपनी फकत सोचता उन्हें जहन्नम के बिल्कुल किनारे पर ठहरा हुआ है। कुरान की आयतें हैं, मैं तफसील में नहीं जाता क्योंकि टाइम नहीं है। आप बिल्कुल एच पे ठहरे हैं जहन्नम की अगर फकत अपनी सोचे हैं। जैसे जैसे आप अपनी सोच को आगे बढ़ाएंगे आप बोलेंगे मैंने 2 के लिए सोच सकता हूं, मैं 10 के लिए सोच सकता हूं, मैं 1000 के लिए सोच सकता हूं, और उसके लिए फिर तैयारी करना शुरू करेंगे। फिर आपको टाइम बस नहीं होगा, गुनाह आपको समझ में आएगा कि गुनाह करने की चीज नहीं है, आखिर में उसके क्या नतीजा निकलता है, जिंदगी का नुकसान, हमेशा का नुकसान। तो आप गुनाह से बचेंगे। नेकियां करने से ताकत आती, बुराइयां करने से ताकत जाती, बदन की या रूह की, बदन की रह भी गई रूह की चले जाती। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि जो है आप अपने आप को अपनी रूह से आइडेंटिफाई करते, बदन के कोई हिस्से से आइडेंटिफाई नहीं करते, है या नहीं है? कोई खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसके 2 पैर काट दिए जाएं तो आधा हो जाता क्या? हाइट तो आधी हो गई उसकी, उन्हें अपने आप को आधा समझता। ऐसे कुछ लोग हैं जिसके ना हाथ है ना पैर है, पैदाइशी बॉडी है खाली, वो लोग अपने को इतना ही समझते। या छोटे लोग जो साइज में कम हाइट के हैं वो लोग अपने को कम समझते, ताल्लुक ही नहीं है हमारे बदन से, हमारा वजूद हमारा बदन से ताल्लुक ही नहीं है। बल्कि हमारा बदन तो कुछ मुद्दत के बाद हर साल बदलता रहता है, पुराने सेल्स मरते हैं, नए सेल्स आते जाते हैं, तो हमारा बदन तो चेंजिंग रियलिटी है। अब आपको बोलिए 2 साल पहले अलग थे आप, अब अलग हो गए, आपके बॉडी तो अलग हो गई, आपके जो 2 साल पहले के सेल्स थे उसमें से कोई भी बाकी नहीं है, लेकिन आप बोलते नहीं नहीं मैं हूं। तो आपका जो रियल सेंस वो है वो खत्म हो जाता, कमजोर पड़ जाता, छोटा छोटा सोचने लगते, आखिरी में ये देखते कि दूसरे का नुकसान करके मैं अपना फायदा कैसा कर सकता हूं। वो सीनेरियो, ये जहन्नम की कंडीशन है। फकत अपनी सोच रहे हैं हलाल तरीके से, वो जहन्नम से एक कदम पहले है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उस रास्ते पे है कि वहां से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा करते हैं, लोग जो चोरी करते हैं, लोग जो कत्लो गारतगरी करते हैं, लोग जो फितना करते हैं, ठीक है, आज के जमाने के अक्सर पॉलिटिशियंस लोगों के फायदे के लिए कहते हैं कि खड़े हैं, लेकिन खड़े होते हैं अपने फायदे के लिए, लोगों के नुकसान के लिए। तो जो इंसान अपने को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरों का नुकसान करे, अल्लाह ऐसे को खल्क किया, अब इल्जाम अल्लाह पे क्यों लगा रहे? अल्लाह ने ऐसे को खल्क नहीं किया, अल्लाह ने हजारों का फायदा पहुंचाने वाले को खल्क किया। हम में आप में सब में वही सलाहियत है, हजारों का फायदा, लाखों का, रसूल ने कितनों का फायदा कर दिया आज तक कर रहे हैं, अली ने कितनों का फायदा कर दिया आज तक कर रहे हैं, आइम्मा ने कितनों का फायदा कर दिया, बड़े उलमा ने कितनों का फायदा कर दिया, करोड़ों लोगों का फायदा कर दिया, और चले गए जमाना पहले, लेकिन आज भी उनके तालीमात और उनकी जिंदगी के असरात से लोग सबक सीखते हैं। आप भी वो हो सकते हैं, हिम्मत है तो हो जाओ, नहीं है तो मत हो, आप लोगों का इख्तियार है। इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, यकीनन हमने उसे इंसान को हिदायत दे दी है, चाहे वो उसका शुक्र करे और उस हिदायत के ऊपर चले या नहीं, तो उसका कुफर करे, उसको उसका इनकार करे और अपनी मर्जी पर चले। तो खुलासा ये है, आप लोग वो पॉइंट पर हैं, जिम्मेदारी हजारों लोगों की लो अभी से दिमाग से, और अल्लाह आपको उसका काबिल बना देगा अगर आप दिल से उसको फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप लोग ये काम नहीं करेंगे तब आपको एहसास होगा कि जो आज हम गुफ्तगु कर रहे हैं उसका नतीजा आपको चंद साल में मालूम हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी नैरो होती जाएगी। ये भी कुरान बोलता है कि अगर तुम मेरे से हट दूर हुए तो तुम्हारी ज़िंदगी क्या होती जाएगी, बिल्कुल तंग होती जाएगी। फ़ाइन्ना लहू मईशतन ज़ंका, ठीक है, यकीनन उसको बहुत 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 तंग ज़िंदगी नसीब होगी, और क़यामत के दिन उसको अंधा उठाया जाएगा क्योंकि रियलिटी से, रूह की रियलिटी से वो गाफिल था। क़यामत के दिन रूह की रियलिटी ज़ाहिर होगी, और क्योंकि वो रूह की रियलिटी से यहाँ पर गाफिल था तो उसको अंधी रूह, यहाँ पर अपनी रूह को अंधा कर लिया था, तो क़यामत के दिन कैसा उठेगा, अंधा, जबकि वो पूछेगा कि मालिक तूने मुझे क्यों अंधा उठाया जबकि मैं वहां पर देखने वाला था। कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, ठीक है, ये इसलिए कि तुमने अपनी रूह के ताल्लुक से जो अंधापन अपने ऊपर तारी कर लिया था, उस अंधेपन का नतीजा तुमको अब क़यामत में जाहिर पूरी तरीके से हो रहा है, वो दुनिया में खुद ब खुद जाहिर हो रहा है, आपके हर अमल में वह अंधापन नजर आ रहा है। लोग देख नहीं सकते मगर रूह को देखने वाले समझ सकते हैं कि ये सामने वाली रूह अंधी हो चुकी है और अल्लाह वहां पर हमको वैसे ही उठाएगा। तो अल्लाह कैसे उठाए हमको, पूरी रूह देखने वाली या आधी देखने वाली या बिल्कुल नहीं देखने वाली और अंधी, कैसी हम इस दुनिया में रूह रखना चाहते हैं? पूरी देखने वाली, आंखों से तो सभी देख लेते, जानवर भी देख लेते हैं, इंसान वो है कि जो रूह से देखता है, बसीर बोलते हैं। अल्लाह कहता है अल्लाह समी और बसीर है, इन्नहु काना समीअन बसीरा, अल्लाह समी और बसीर है। अल्लाह को बदन है फिर कैसा सुनता है? अल्लाह देखता है कह रहा है, अल्लाह को आंखें हैं कैसे देखता है? उसी तरीके से ना रूह को आंख है ना रूह को कान है, ठीक है, मगर रूह देख भी सकती है और सुन भी सकती है क्योंकि अल्लाह की फूकी हुई रूह है। उसको इस्तेमाल करें, बदन से बेहतरीन फायदा उठाएं, एक दूसरे को मदद करें, ग्रुप में एक दूसरे का साथ रखें और उसका नतीजा ये होगा कि एक नई दुनिया आप लोग को चंद साल में, 4-5 साल में महसूस होने लगेगी। अभी ये बहुत छोटे हैं आप लोग, मैं बोल रहा हूँ खाली इसको दिमाग में रख लीजिए, बहुत सी बातें अगर समझ में भी नहीं आई हैं तो अपने दिमाग में रख लीजिए, आगे जैसे जैसे ये मैं पैटर्न आप लोगों को बोल रहा हूँ उस पर अमल करके देखिए, उसका नतीजा 2-3 साल में आप बोलेंगे कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं 3 साल पहले था। फोटो अगर उस जमाने की और इस जमाने की लेंगे तो लगभग एक जैसी रहेगी, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, लोग जब बोलेंगे अरे नहीं फोटो तुम्हारी 3 साल पुरानी और ये फोटो तो बिल्कुल एक जैसी है, लगभग थोड़े बड़े हो गए हैं, जो 10th में थोड़ी मूछी आ गई थोड़ी दाढ़ी आ गई, कहेंगे नहीं 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 मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर में तब्दीली आई है, मुझ में अंदर से तब्दीली आई है, मुझे तब्दीली का अंदाजा अंदर से हो रहा है। पसंद है वो चीज कि आपको अंदर से अलग नजर आए, आप आईने में वैसे ही रहें, पसंद है या नहीं है? कौन पसंद करता है कि अंदर से अच्छा ना हो? और वो अगर देख सकता है कि मैं अंदर से अच्छा हुआ हूं, मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता, मैं गुनाह करने के लिए मेरे को मुश्किल हो रही है, ठीक है, मैं झूठ बोलने पे से कतरा रहा हूँ, मैं दूसरों की खुशियों में खुश हो रहा हूँ, दूसरों को तकलीफ हुई तो मुझे भी तकलीफ हो रही है, यानी अब मेरी रूह फैलने लगी है, बढ़ने लगी है, बदन वही है, रूह बदल बढ़ने लगी है, रूह ज़्यादा पढ़ सक रही है, रूह ज़्यादा पढ़कर समझ सक रही है, ऐसी रूह चाहिए नहीं चाहिए? ठीक है, इसको अल्लाह जो है हयात तय्यबा कहता है, मर रही नहीं जिंदा है मगर एक प्योर लाइफ आपको मिल रही है दुनिया में, ये प्योर लाइफ ट्रांसलेट होके क़यामत के दिन जन्नत की शक्ल में आएगी। अगर आपकी लाइफ प्योर या नहीं, मैं कुरान के ही आयात से इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको एक प्योर लाइफ मिलने का चांस है जो आपके खुद अपने हाथ में है, कर सकते हैं, कोई आपको उसे रोक नहीं सकता सिवाय अपने आपके, और अल्लाह इस रास्ते में आपकी मदद करने को तैयार है। इन्ना अलैना नसरुल मोमिनीन, हम पर ही लाजिम है कि हम मोमिनीन की नुसरत करें, तो आपकी इस कोशिश में कौन साथ देगा आपको? अल्लाह। और अगर इससे हटकर कोशिश करेंगे तो आपका साथी कौन हो जाएगा? शैतान। अब मर्जी आपकी, या तो शैतान को अपना दोस्त बनाओ या अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ। कुरान कहता नेमल मौला व नेमन नसीर, बेहतरीन सरपरस्त और बेहतरीन मददगार कौन है? अल्लाह है। तो कुरान की ये सब आयतें आके एक शक्ल में एक गुलदस्ता बन जाते, उसकी खुशबू फकत कौन सूंघ सकते है? जिसकी रूह तैयार हो, जिसकी रूह तैयार हो। तो अब आज के दिन हम ये जो गुफ्तगू किए हैं, आप लोग अपनी रूह को तैयार कर लें, फकत तैयार कर लें कि मालिक मैं तेरे रास्ते पे चलना चाह रहा हूं, तू मुझे लेके चल, और उसके बाद देखिए कि वो कैसे आप लोग को लेके चलता है, और आपके जरिए से जो आगे चल के फैज निकलेगा, फायदा होगा लोगों को, उससे आप लोगों को जो है खुशी होगी, और जब सबको फायदा होगा तो आपकी भी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी, जो आप जिंदगी के लिए चाहते हैं वो आपको यकीनन मिल जाएगा। लेकिन उसकी शर्त यह है कि अपनी पूरी सलाहियत अल्लाह के लिए कर दें, पढ़ें तो अल्लाह के लिए पढ़ें, जिए तो अल्लाह के लिए जिए, बाकी का काम अल्लाह आपके लिए पूरा कर देगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।